एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो इतिहास की किताबों से निकलकर अक्सर हमारी टीवी स्क्रीन पर छाया रहता है। क्रांतियां ये क्यों होती हैं? क्या ये बस अचानक भड़क उठती हैं या इनके पीछे कोई गहरा पैटर्न छुपा होता है?
बिल्कुल, और इसी पैटर्न को, इसी गुत्थी को समझने के लिए हम आज बात करेंगे अमेरिकी समाजशास्त्री और इतिहासकार जैक ए गोल्डस्टोन के काम की, खासकर उनकी किताब रेवोल्यूशंस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनके दूसरे संरचनात्मक विश्लेषणों पर।
अच्छा, जैक गोल्डस्टोन।
और ये आज इतना जरूरी क्यों है इस पर बात करना? देखिए, आज दुनिया में कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता है, बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं सत्ता बदल रही है, तो गोल्डस्टोन का नजरिया हमें सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर इन घटनाओं की जड़ों को समझने में मदद करता है।
मतलब ये समझने में कि आखिर ये सब होता क्यों है, सतह के नीचे क्या चल रहा है।
हाँ बिल्कुल, गोल्डस्टोन का मूल सवाल ही यही है कि भाई क्यों कुछ देशों में इतना भारी दमन होता है फिर भी शांति रहती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ देश जो बाहर से बड़े स्थिर दिखते हैं वो अचानक से क्रांति की आग में झुलस जाते हैं। वो सतही जवाब नहीं ढूंढते, वो संरचनात्मक कारण तलाशते हैं।
दिलचस्प। तो ये जैक गोल्डस्टोन है कौन, थोड़े इनके बारे में बताएं।
हाँ, तो जैक गोल्डस्टोन जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं और क्रांति, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी इसके अध्ययन में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें अक्सर क्रांति सिद्धांतकारों की चौथी पीढ़ी का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है।
चौथी पीढ़ी। और इनकी खास बात क्या है, मतलब किस चीज के लिए जाने जाते हैं?
उनकी खास पहचान बनी 1991 में आई उनकी किताब से, रेवोल्यूशन एंड रिबेलियन इन द अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत प्रभावशाली किताब थी वो। उसमें उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ऑटोमन साम्राज्य, इन सब में सदियों पहले राजसत्ता कैसे टूटी, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया।
अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन।
हाँ, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जनसंख्या का दबाव, सरकारी खजाने का संकट, जो शासक वर्ग है मतलब एलीट क्लास, उसमें फूट पड़ जाना और जनता का गुस्सा, ये सब चीज़ें मिलकर क्रांति का माहौल तैयार करती हैं। यही उनका मशहूर संरचनात्मक जनसांख्यिकीय सिद्धांत है।
तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि विद्रोही क्या कर रहे हैं, बल्कि ये पूछते हैं कि सरकार कमजोर क्यों हुई, वो रोक क्यों नहीं पाई विद्रोह को।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वो इतिहास और समाजशास्त्र को मिलाते हैं, वो सदियों और महाद्वीपों के पैटर्न देखते हैं, मतलब 1640 के इंग्लैंड से लेके 2010 के अरब स्प्रिंग तक। उनका नजरिया बहुत व्यापक है, उसमें अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, राजनीति सब कुछ शामिल है। वो पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए, तो अब आते हैं इस किताब पर, क्रांतियां, एक बहुत संक्षिप्त परिचय। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मकसद क्या है?
हाँ देखिए, नाम ही बताता है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका मकसद है कि जो जटिल एकेडेमिक रिसर्च है उसे आम पाठक तक, मतलब हम जैसे लोगों तक, आसान भाषा में पहुंचाया जाए। और ये उन आम धारणाओं को चुनौती देती है कि भाई सिर्फ गरीबी है या लोगों में गुस्सा है तो क्रांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
अच्छा, तो ये हमें एक तरह का औजार देती है क्रांति को समझने के लिए।
हाँ, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देती है। किताब पाठक को एक सफर पर ले जाती है। पहले वो बताती है कि क्रांति असल में है क्या, उसकी एक सटीक परिभाषा देती है।
और क्या है वो परिभाषा, क्योंकि अक्सर हम हर बड़े विरोध प्रदर्शन को ही क्रांति कह देते हैं।
सही कहा, गोल्डस्टोन बहुत स्पष्ट हैं इस मामले में। वो कहते हैं कि हर उथल पुथल क्रांति नहीं होती। सच्ची क्रांति में तीन चीजें होनी जरूरी हैं। पहली, राज्य का जबरदस्ती तख्ता पलट, मतलब मौजूदा सरकार और उसकी जो बल प्रयोग की शक्ति है, सेना, पुलिस, उसका हारना और खत्म होना।
ठीक है, जबरदस्ती तख्ता पलट, और दूसरी?
दूसरी, मौलिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन। सिर्फ नेता नहीं बदलते, बल्कि शासन के नियम, कानून, संपत्ति के अधिकार, समाज में ऊंच नीच का जो ढांचा है उसका आधार ही बदल जाता है।
मतलब बुनियादी बदलाव। और तीसरा?
तीसरा, एक नई और अक्सर काफी रेडिकल न्याय संगत विचारधारा का आना, एक ऐसा नजरिया जो इस पूरे बदलाव को सही ठहराए, पुराने निजाम को गलत बताए और लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर एकजुट करे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद या कोई धार्मिक सिद्धांत भी हो सकता है।
अच्छा, तो इस लिहाज से देखें तो शायद फ्रांसीसी क्रांति एक सच्ची क्रांति थी, पर अमेरिकी क्रांति शायद उतनी नहीं, क्योंकि वहां सामाजिक ढांचा उतना नहीं बदला था।
बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। किताब फिर आगे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन जैसी जो क्लासिक क्रांतियां हैं उनके उदाहरणों से एक सामान्य पैटर्न दिखाती है। वो मार्क्स, गुर, स्कोकपाल जैसे पुराने सिद्धांतकारों के विचारों की समीक्षा भी करती है और फिर अपना मुख्य सिद्धांत पेश करती है।
हाँ, और वही मुख्य सिद्धांत है जिसे आपने कहा, तीन घातक शर्तें।
हाँ, फेटल ट्राइफेक्टा। गोल्डस्टोन कहते हैं कि क्रांति के लिए इन तीन स्थितियों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ये हैं, पहला सरकारी खजाने का संकट या राज्य का वित्तीय दिवालियापन, दूसरा शासक वर्ग यानी इलीट क्लास में गहरी फूट और आपसी झगड़ा, और तीसरा जनता को बड़े पैमाने पर लामबंद करने की यानी एकजुट होकर विरोध करने की उच्च क्षमता।
वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कोई एक कारण काफी नहीं है, इसे गोल्डस्टोन परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, जब ये सारी चीजें एक साथ टकराती हैं।
बिल्कुल, परफेक्ट स्टॉर्म। और किताब फिर इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आधुनिक क्रांतियों को भी समझाती है, जैसे 1979 का ईरान, 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन और हाल के सालों में हुआ अरब स्प्रिंग।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आपने कहा कि गोल्डस्टोन का बड़ा योगदान ये दिखाना है कि क्रांति राज्य की कमजोरी से ज्यादा जुड़ी है।
हाँ, मेरे ख्याल से ये उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि क्रांति अक्सर विद्रोहियों की ताकत से ज्यादा राज्य की अपनी कमजोरी की वजह से सफल होती है। इसलिए मुख्य सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्यों लड़े, बल्कि ये कि सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। फोकस राज्य पर होना चाहिए।
तो जो पहली घातक शर्त आपने बताई, राज्य का वित्तीय संकट और अक्षमता, इसका क्या मतलब है?
वो अपनी सेना को तनख्वाह नहीं दे पाती, अपने अधिकारियों को नहीं दे पाती, जो जरूरी सेवाएं हैं वो ठप पड़ जाती हैं। राज्य मतलब सरकार अंदर से बिल्कुल खोखला और भंगुर हो जाता है।
भंगुर मतलब वो दबाव नहीं झेल पाता।
हाँ, वो लचीलापन खो देता है, संकट का सामना करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है।
और दूसरी शर्त, एलीट वर्ग में गंभीर फूट, इसका क्या मतलब है? कौन है ये एलीट?
एलीट मतलब वो लोग जो सत्ता के करीब हैं, जिनके पास शक्ति है, पैसा है, रुतबा है, जैसे बड़े जमींदार, अमीर व्यापारी, ऊंचे सरकारी अफसर, सेना के बड़े अधिकारी।
जब इस वर्ग में ही आपस में फूट पड़ जाए,
जब वो सत्ता और संसाधनों के लिए आपस में ही लड़ने लगे, या उन्हें लगने लगे कि मौजूदा राजा या सरकार उनके अपने हितों के लिए ही खतरा बन गई है,
तब
वो राज्य का ही विरोध करने लगते हैं। और यही बात और पेचीदा हो जाती है।
कैसे?
क्योंकि जब एलीट क्लास बंट जाता है तो उसमें से कुछ प्रभावशाली लोग, जिन्हें गोल्डस्टोन काउंटर एलीट कहते हैं, वो विपक्ष के साथ मिल जाते हैं। वो विपक्ष को पैसा देते हैं, नेतृत्व देते हैं, अनुभव देते हैं और सबसे जरूरी, वैधता देते हैं।
एक तरह से मान्यता मिल जाती है विपक्ष को।
अच्छा,
तो मतलब असली लड़ाई शायद पहले सत्ता के गलियारों में ही शुरू हो जाती है, जनता की सड़कों पर आने से भी पहले।
काफी हद तक अगर एलीट एकजुट है तो सरकार का टिके रहना आसान होता है, फूट पड़ती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
ठीक है, और तीसरी शर्त थी उच्च जन लामबंदी क्षमता।
हाँ, इसका मतलब है कि आम लोगों में सिर्फ गुस्सा या शिकायतें होना काफी नहीं है, उनमें एकजुट होकर संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर विरोध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसमें कई चीजें मदद करती हैं, जैसे शहरों का बढ़ना जहां लोग आसानी से जमा हो सकते हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा जिसे गोल्डस्टोन यूथ बल्ज कहते हैं, जिनके पास खोने को कम और पाने की उम्मीद ज्यादा होती है, और साक्षरता का बढ़ना जिससे नए विचार, नई विचारधाराएं तेजी से फैल सकती हैं।
लेकिन आपने कहा था कि गोल्डस्टोन एक चौथी चीज भी जोड़ते हैं जो इन तीनों को बांधती है।
हाँ बिल्कुल, वो है एक एकजुट करने वाली विचारधारा। ये एक तरह से गोंद का काम करती है। ये अलग अलग नाराज समूहों को, जैसे नाराज एलीट, गुस्साए शहरी मजदूर, हताश किसान, इन सबको एक साझा मकसद देती है।
कैसे?
ये विचारधारा बताती है कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ क्या है, मौजूदा शासन क्यों नाजायज है, क्यों इसे हटाना जरूरी है, और सबसे अहम, ये एक बेहतर आकर्षक भविष्य का सपना दिखाती है।
तो ये सबको एक झंडे के नीचे ले आती है।
एकदम सही। और सबसे, हाँ, सबसे अहम बात यही है कि ये चारों चीजें, राज्य का संकट, एलीट में फूट, जन लामबंदी की क्षमता और एकजुट करने वाली विचारधारा, ये सब एक साथ मौजूद हों। कोई एक या दो समस्याएं हों तो राज्य शायद उनसे निपट लें, पर जब यह परफेक्ट स्टॉर्म आता है, जब साले दबाव एक साथ पड़ते हैं, तो राज्य की मुकाबला करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है।
ये आधुनिक उदाहरणों से और साफ होता होगा, जैसे आपने ईरान का जिक्र किया था 1979 का।
हाँ, ईरान एक क्लासिक केस है। शाह पहलवी बाहर से बहुत ताकतवर दिखते थे, बड़ी सेना, अमेरिका का साथ, पर उनका शासन सुल्तानिस्टिक था।
सुल्तानिस्टिक, ये क्या होता है?
सुल्तानिस्टिक मतलब जहां सारी ताकत और देश की दौलत एक व्यक्ति या उसके परिवार के हाथों में सिमट जाए, बाकी जो एलीट वर्ग है उसे हाशिए पर डाल दिया जाए। तो शाह ने यही किया, इससे बाकी एलीट बहुत नाराज थे। फिर 70 के दशक में तेल के झटकों से आर्थिक संकट भी आया, मतलब राज्य की वित्तीय हालत भी डावाडाउन हो गई।
और फिर विचारधारा,
और फिर आयतुल्ला खुमेनी ने एक बहुत शक्तिशाली, एकजुट करने वाली इस्लामी विचारधारा पेश की, जिसने शहर के पढ़े लिखे मध्य वर्ग से लेकर बाजार के व्यापारियों और गांव के रूढ़िवादी लोगों तक सबको शाह के खिलाफ एकजुट कर दिया। परफेक्ट स्टॉर्म।
और 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन, वहां भी यही पैटर्न था।
हाँ, काफी हद तक। वहां दशकों से आर्थिक ठहराव था, जो एक तरह का वित्तीय संकट ही था। कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर भी एलीट में फूट पड़ चुकी थी सुधारवादी बनाम कट्टरपंथी, जनता में असंतोष बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, पश्चिम के उदार लोकतंत्र का एक बहुत आकर्षक विकल्प सामने था, एक नई विचारधारा, एक बेहतर भविष्य का सपना।
और अरब स्प्रिंग जो 2010-11 में हुआ, मिस्र ट्यूनिशिया,
वहां भी आप देखिए, मिस्र में मुबारक, ट्यूनिशिया में बिन अली, ये भी सुल्तानिस्टिक शासक थे, दशकों से सत्ता में थे, सारी ताकत और दौलत अपने परिवार और चंद करीबियों में समेट रखी थी। इससे बाकी एलीट, सेना, व्यापारी वर्ग, नौकरशाही, उनमें भारी नाराजगी थी। राज्य अंदर से बेहद भंगुर हो चुके थे।
तो जब लोग सड़कों पर उतरे,
हाँ, जब जनता का बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ, तो एलीट के महत्वपूर्ण हिस्सों ने, खासकर सेना ने, शासक का साथ छोड़ दिया, और ये सत्ताएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
सोशल मीडिया ने इसमें क्या भूमिका निभाई, उसका जिक्र भी आता है।
हाँ, सोशल मीडिया ने बेशक लोगों को जल्दी एकजुट करने, खबरें फैलाने में बहुत मदद की, लामबंदी तेज हुई, लेकिन गोल्डस्टोन का तर्क है कि जो मूल कारण थे, सुल्तानिस्टिक शासन, एलीट में फूट, आर्थिक समस्याएं, वो उनके मॉडल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। सोशल मीडिया एक सहायक कारक था, मूल कारण नहीं।
लेकिन क्रांति के बाद क्या होता है, क्या हमेशा अच्छा ही होता है?
ये एक मुश्किल सवाल है। गोल्डस्टोन भी बताते हैं कि क्रांति के नतीजे अप्रत्याशित होते हैं। अक्सर होता क्या है कि जो गठबंधन मिलकर पुरानी सत्ता को गिराता है, जिसमें नरमपंथी, गरमपंथी, अलग अलग गुट होते हैं, वो सत्ता में आते ही आपस में लड़ने लगते हैं।
हाँ, जैसे फ्रांस में हुआ था, पहले सबने मिलकर राजा को हटाया, फिर आपस में ही आतंक का राज शुरू हो गया।
बिल्कुल, नरमपंथी बनाम कट्टरपंथी, और जो मूल समस्याएं थीं, जैसे देश की खराब आर्थिक हालात, एलीट की आपसी खींचतान, वो तो अक्सर बनी रहती हैं। तो नई सरकार को भी सत्ता मजबूत करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कई बार उन्हीं कठोर नीतियों का सहारा लेना पड़ता है जिनसे लड़कर वो आई थी।
तो मतलब क्रांतियां अक्सर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाती, और कभी कभी तो
नई तानाशाही में बदल जाती हैं।
हाँ, ये दुखद है, पर अक्सर ऐसा होता है। क्रांति लाना एक बात है, और उसके बाद एक स्थिर, बेहतर व्यवस्था बनाना बिल्कुल दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल बात।
तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से, कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे ख्याल से कुछ बहुत अहम बातें हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, राज्य का टूटना केंद्रीय है। मतलब क्रांति पहले राज्य की विफलता होती है, बाद में विपक्ष की सफलता। हमारा ध्यान शासन की अंदरूनी कमजोरियों पर होना चाहिए।
ठीक है, राज्य की कमजोरी। दूसरा, यह हमेशा एक परफेक्ट स्टॉर्म होता है, मल्टीकॉजल, यानी कई कारणों का संगम। कोई एक चीज क्रांति नहीं लाती है। वित्तीय संकट, एलीट में फूट, जनता का संगठित होना और विचारधारा, इन सब का एक साथ आना जरूरी है। इसीलिए देखा जाए तो वास्तविक क्रांतियां उतनी आम नहीं हैं, और न ही वो अवश्यंभावी होती हैं। संयोग की भी भूमिका होती है।
परफेक्ट स्टॉर्म। तीसरा,
एलीट वर्ग की भूमिका निर्णायक है। शासक वर्ग अगर एकजुट है तो शासन कितना भी दमनकारी क्यों ना हो, उसे उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एलीट बढ़ जाता है और कुछ ताकतवर लोग विपक्ष से मिल जाते हैं, तो खेल पलट सकता है। वो विपक्ष को वो संसाधन, वो नेतृत्व, वो वैधता देते हैं जो शायद अकेले जनता के पास न हो।
सही कहा, लड़ाई पहले ऊपर शुरू होती है। चौथा,
विचारधारा वो गोंद है जो सबको जोड़ती है। ये सिर्फ शिकायतों का पुलिंदा नहीं होती, बल्कि उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदलती है। ये अलग अलग हितों वाले समूहों को, अमीर गरीब, शहरी देहाती, सबको एक साझा दुश्मन और एक साझा लक्ष्य के इर्द गिर्द लाती है।
हाँ, ये हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, किसी भी बड़े आंदोलन में कैसे एक खास कहानी, एक नैरेटिव लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें एकजुट करता है। बेशक हमें यहाँ किसी खास आंदोलन का पक्ष नहीं लेना है, पर पैटर्न तो दिखता है।
बिल्कुल। और पांचवां संदेश है सुल्तानिस्टिक शासनों की नाजुकता। वो शासन जहां सारी ताकत और दौलत एक व्यक्ति या परिवार में सिमट जाए, ऐसे शासन बाहर से भले ही बड़े मजबूत फौलादी दिखे, पर अंदर से वो कांच की तरह भंगूर होते हैं। जरा सा झटका लगते ही वो मुड़ते नहीं, टूट जाते हैं।
क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता, संस्थाएं कमजोर होती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बाकी इलीट को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं, उन्हें अलग थलग कर देते हैं। तो जब संकट आता है तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचता।
ये पांचों बातें बहुत सोचने वाली हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी होंगे जो खास तौर पे याद रह जाते, जो इन तर्कों का सार हो?
हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे गोल्डस्टोन क्रांति की जो परिभाषा देते हैं, उसे इस तरह कहा जा सकता है, एक सच्ची क्रांति केवल सरकार का बदलना नहीं है, ये राज्य, उसकी सामाजिक नींव और मार्गदर्शक विचारधारा का पूर्ण पतन और जबरदस्ती पुनर्निर्माण है। ये क्रांति के लिए एक बहुत ऊंचा मानक तय करता है, उसे किसी साधारण तख्ता पलट या बड़े दंगे से अलग करता है।
हाँ, ये परिभाषा ही बहुत कुछ कह देती है। और वो परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात,
उसके बारे में भी एक बहुत अच्छी पंक्ति है, कुछ इस तरह, क्रांतियां केवल गरीबी या उत्पीड़न से नहीं होती, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म से होती हैं, जहां राज्य का वित्तीय दिवालियापन उसके अभिजात वर्ग के बीच कड़वे संघर्षों और व्यापक जन विद्रोह की क्षमता के साथ मिल जाता है। ये गोल्डस्टोन का केंद्रीय तर्क है। ये बताता है कि क्यों भारी गरीबी और दमन के बावजूद हर जगह क्रांति नहीं होती, वो खास संगम जरूरी है।
और वो राज्य की कमजोरी पर फोकस वाली बात,
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारक विद्रोहियों की ताकत नहीं बल्कि राज्य की कमजोरी है। सवाल यह है कि सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। फोकस विद्रोही से हटकर राज्य की अपनी क्षमता या अक्षमता पर आ जाता है।
बिल्कुल। और वो सुल्तानी स्टिक शासन वाली बात, वो क्रिस्टल के ग्लास वाला उदाहरण बड़ा सटीक था।
हाँ, वो कहते हैं व्यक्तिवादी तानाशाही एक सुंदर क्रिस्टल के ग्लास की तरह होती हैं। वे मजबूत दिखती हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से भंगुर होती हैं। जब संकट आता है तो वे मूर्ति नहीं, टूट जाती हैं। ये मुबारक, बेन अली या इतिहास के कई और तानाशाहों के अचानक पतन को बहुत अच्छे से समझाता है। आज भी ये बात उतनी ही सच है।
तो ठीक है, हमने गोल्डस्टोन के विचारों को समझा, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के लिए क्या मतलब है? क्या हम इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं?
जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम दुनिया में कहीं भी राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन की खबरें सुने या पढ़ें, तो हम सिर्फ सतही बातों से आगे जाकर सोच सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, क्या वहां की सरकार पर कोई बड़ा वित्तीय संकट है? क्या सत्ताधारी पार्टी या सेना या बड़े व्यापारिक घरानों में कोई अंदरूनी फूट दिख रही है?
हाँ, और क्या वहाँ बड़ी संख्या में युवा है जो नाराज हैं, बेरोजगार हैं? क्या लोगों के पास संगठित होने के साधन हैं? और क्या कोई नई शक्तिशाली विचारधारा पकड़ बना रही है जो लोगों को एकजुट कर रही है?
बिल्कुल। ये सवाल हमें सिर्फ खबरों के उपभोक्ता बने रहने से आगे ले जाते हैं। ये हमें वैश्विक स्थिरता का एक ज्यादा सूक्ष्म, एक ज्यादा गहरा विश्लेषण करने में मदद करते हैं।
और शायद नीति निर्माताओं के लिए भी इसमें कुछ सबक हैं, काल्पनिक रूप से ही सही।
हाँ, बिल्कुल। उनके लिए तो ये एक तरह की चेकलिस्ट हो सकती है स्थिरता बनाए रखने के लिए। पहला, देश की आर्थिक सेहत का ध्यान रखो, राजकोषीय स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। दूसरा, समाज के जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समूह हैं, जो इलीट हैं, उन्हें बेवजह नाराज करने से बचो, उन्हें साथ लेकर चलो। तीसरा, युवाओं की शिकायतों, उनकी आकांक्षाओं को गंभीरता से लो और उनका समाधान करो।
मतलब सक्षम और जवाबदेह शासन ही सबसे अच्छा बचाव है क्रांति से।
अंततः तो यही बात है, दमन शायद कुछ समय काम कर जाए, पर लंबे समय में सक्षम, समावेशी और जवाबदेह शासन ही स्थिरता लाता है।
और हम जैसे आम पर्यवेक्षकों या नागरिकों के लिए,
हमारे लिए ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है उसे बेहतर समझने में मदद करता है। ये एक तरह से राजनीतिक जोखिम को आंकने का तरीका भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या विदेशों में व्यापार या निवेश करने में रुचि रखते हैं। अगर कहीं ये तीन चार घातक शर्तें एक साथ दिखने लगें, तो ये एक तरह की चेतावनी की घंटी है।
सबक है कि सिर्फ गुस्सा या अच्छी नीयत काफी नहीं है, बड़ी व्यवस्था को बदलने के लिए शायद एलीट के अंदर से सहयोगियों की जरूरत पड़ती है और राज्य की अपनी अंदरूनी कमजोरियों का होना भी जरूरी हो सकता है। और ये भी कि क्रांति के अगले दिन का प्रबंधन करना, यानी उसके बाद क्या करना है, ये सोचना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ सत्ता बदलने से आगे की एक स्पष्ट रणनीति चाहिए होती है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही? अब मेरे लिए शायद दो बातें हैं। पहली, गोल्डस्टोन के इस मॉडल की ताकत की क्रांति के लिए इन सभी तत्वों का एक साथ आना कितना जरूरी है। ये समझाता है कि व्यापक असंतोष तो कई जगह होता है, पर वास्तविक क्रांतिकारी स्थितियां कितनी खास और दुर्लभ होती हैं। और दूसरी बात, वो जो सुल्तान स्टेक या बेहद कठोर न बदलने वाली संस्थाओं की भंगुरता वाली बात है, ये विचार कि अनम्य होना, लचीला न होना ही समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ये काफी सोचने पर मजबूर करता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि क्रांतियां पूरी तरह से किस्मत का खेल या कोई दैवीय घटना नहीं है। उनके पीछे पहचाने जा सकने वाले पैटर्न होते हैं, संरचनाएं होती हैं, और खास तौर पर ध्यान विद्रोहियों की गतिविधियों से हटाकर राज्य की अपनी कमजोरियों, उसकी नाजुकता पर लाना, ये वाकई आंखें खोलने वाला नजरिया है। इससे इतिहास थोड़ा कम अव्यवस्थित लगता है।
सही कहा।
और जाते जाते एक अंतिम विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गोल्डस्टोन भविष्य के कुछ दबावों की और भी इशारा करते हैं, जैसे कई विकासशील देशों में युवाओं की बहुत बड़ी आबादी का होना, जिसे यूथ बल्ज कहा जाता है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव, सूखा, बाढ़, संसाधनों पर दबाव। जरा सोचिए, आने वाले दशकों में ये कारक, युवा आबादी और जलवायु परिवर्तन, राज्यों की क्षमता, उनके खजाने और एलीट वर्ग की एकता के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे?
क्या ये उन घातक शर्तों के बनने की संभावना को बढ़ाएंगे? क्या ये भविष्य में नई तरह की अस्थिरता या क्रांतियों का कारण बन सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको नजर रखनी होगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।